गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद बोले बांके बिहारी लाल यथा काश स्थितो नित्यम सस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कुन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पख्यये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतकाममिमं कृष्ण मा वशं प्रकृतेर्वशात्। आप सब हमारे भाइयों बहनों, परम पूज्य प्रातस्मरणीय कैलाश पीठाधीश्वर पंचम पीठाधीश्वर के पूज्य चरण में वंदन। आप सभी भक्तिमती माताएं भक्तजन, गीता जी के वक्ता भगवान श्री कृष्ण इस बात का निरूपण छठवां श्लोक में करते हैं, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ऐसे एक वेद मंत्र है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तमेतम तम एतम वेदानुवचनेन, उस ब्रह्म को वेद के वचन के माध्यम से वेद आपको क्या देते हैं? दो विषय देते हैं, एक विधि का विषय देते हैं, एक निषेध का विषय देते हैं। वेदांत क्या देता है? दो देते हैं, एक विधेय एक निषेध। शास्त्र के अनुसार जो धर्म है वो विधेय है और शास्त्र निषिद्ध जो है वो निषेध है। यदि शास्त्र का ये वाणी है, वेद यही कहते हैं, और वेद में 100,000 मंत्र है, 100,000 मंत्र में कर्मकांड उपासना और ज्ञान कांड को लेकर के 100,000 है। ज्ञान कांड 4,000 मंत्र को निरूपण करते हैं, कर्म कांड 80,000 मंत्र को निरूपण करते हैं और 16,000 मंत्र को उपासना पद्धति जो है ना निरूपण करते हैं। ये चार है, 100,000 मंत्र है। उस मंत्रों में ये सिद्ध किया गया कि वेद भाग में दो प्रकार के जो है ना वेद में भाग है, सतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। एक सतपथ ब्राह्मण है, एक गोपथ ब्राह्मण है, वहां दो ब्राह्मण है। तो कहते हैं कि वेद की जो परंपरा है वो आरण्यक परंपरा है, अरण्य में लोग पढ़ते थे ये वेद, जहां जंगल होता था, जहां कोई संसार का प्रपंच नहीं होता था, वो विषय। इसलिए तपोवन जी ने कहा ना कि शिवानंद यदि तुमको यदि नरक में जाना है तो हरिद्वार जाओ, तपोवन जी ने कहा, स्वामी जी ने। स्वामी तपोवन महाराज जी बड़े लंबे चौड़े के थे, बोले कि यदि तुमको नरक जाना है ना तो हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, और यदि स्वर्ग में आना है, वैकुंठ में रहना है, मोक्ष में रहना है, तो उत्तर काशी के ऊपर जाओ। तो चिन्मयानंद और शिवानंद जी ने कहा कि गुरु जी क्या करें, ये तो बड़ी समस्या है, क्योंकि स्वामी शिवानंद जी काली कमली बाबा में विशुद्धानंद महाराज जी थे, वो काला कमल पहनते थे, लोग उनको काली कमली कहते थे। तो स्वामी शिवानंद जी जो है ना, लाइन में लग करके जब भोजन के लिए गए तो वहां के जो मैनेजर था ना, वो डांट दिया। उसने कहा, ये मोटू इतना मोटा साधु बन गया है, काम नहीं धाम नहीं, खाने के चक्कर में। तो उनको जैसे डांटा ना, तो महाराज जी को बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा कि मैं भी अपने तपस्या के द्वारा संतों ब्राह्मणों को भोजन दूंगा, यही भाव रख करके उत्तर काशी गए। दैव संयोग से गोमुख से जो है ना, तपोवन जी महाराज आए थे, और तपोवन जी उस समय सिद्ध महापुरुष थे, कैलाश के विष्णु देवानंद गिरी जी, पूज्य करपात्री जी महाराज, और उस समय तपोवन जी महाराज जी का बड़ा नाम था। तो तपोवन जी ने कहा कि यदि वेदांत चिंतन करना है तो आपको अरण्य में जाना पड़ेगा। अरण्य का अर्थ होता है घोर एकांत, और एकांत का अर्थ होता है न रणम इति अरण्यम, जहां युद्ध नहीं होता उसको अरण्य कहते हैं। संसार में युद्ध हो सकता है, लेकिन आपके हृदय में युद्ध नहीं होना चाहिए, आपके हृदय में द्वंद नहीं होना चाहिए। हृदय में यदि द्वंद हुआ तो आप जंगल में रहने पर भी, वनवास में रहने पर भी, एकांत में रहने पर भी आप एकांती नहीं होंगे। बने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, इसलिए भर्तहरि ने कहा कि घोर जंगल में है, कुटिया में है, लेकिन आसक्ति प्राणी जो है ना, उसके पास संसार है। बने भी दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, गृहे भी पंच इंद्रिय निग्रह तप, घर में रह करके भी वो तपस्वी है। क्यों तपस्वी है? कि उसके मन को जो है ना, गोविंद के चरणारविंद में दे चुका है। भगवान के चरणारविंद में अपना मन को जिन्होंने अर्पित कर लिया है, वो ये घर संसार में रहते हुए भी वो पूर्ण जो है ना संत है, विवेक वैराग्यवान है, पंचेन्द्रिय निग्रह तप। इसलिए यहां पर कहते हैं कि अरण्य का मतलब यह है कि जहां युद्ध न हुए। तमेतम वेदानु वचने न ब्राह्मणा विविदिशंति, वेद के द्वारा ब्राह्मण मान ऋषि लोग कहते हैं, विविदिशंति कहते हैं, क्या कहते हैं? यज्ञ न, यज्ञ के द्वारा, दाने न, दान के द्वारा, ये तृतीया विभक्ति है, यज्ञ न, यज्ञ के द्वारा, दाने न, दान के द्वारा। इसलिए यज्ञ न, दाने न, व्रते न, व्रत के द्वारा, हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति है व्याकरण में, हेतु तृतीया सूत्र से तृतीया है। यज्ञ न, दाने न, तपसा, तपस्या के द्वारा, अनाशक न, अनाशक कहते हैं व्रत को। आपने व्रत रखा सुबह से शाम तक, एकादशी, संक्रांति या पूर्णिमा, ये व्रत के द्वारा, यज्ञ न, दाने न, तपसा, अनाशक न, इनके माध्यम से अपने को जानने की इच्छा करते हैं। आपने यज्ञ किया, गीता जी में एक यज्ञ की बात आई है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, यहां से लेकर के नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि बिंदति, ये श्लोक तक सोलहवा यज्ञ का विधान है। सोलह यज्ञ यहां से वहां तक, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, मैं जो अर्पण करता हूं वो ब्रह्म है। ब्रह्म इसलिए है वो व्यापक है, मैं यदि सूर्य को जल देता हूं तो वो व्यापक है, अर्पण किया। दान दिया तो अर्पण किया, इसलिए ब्रह्मार्पणम जो भी मैं करता हूं सब ब्रह्म है, व्यापक है, उस परमेश्वर के लिए करता हूं। परमेश्वर ही दान लेता है और परमेश्वर ही दान देता है। तो यहां पर जो है ना ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि से लेकर के आप जब पढ़ेंगे उस श्लोक में, 5-6 श्लोक है और वो श्लोक तक आएगा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञास्त तथा परि, द्रव्य को देना, योग करना, सत्संग श्रवण करना, फिर अंतिम में कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ये जो ज्ञान यज्ञ है सत्संग, इसके माध्यम से गीता जी में भगवान ने 16 यज्ञ बताया और 16 यज्ञ को लेकर के अंतिम में यह कहा गया कि जो वेदांत जन्य जो ईश्वर है गीता के अनुसार, ये परमात्मा क्या है, असंगोयम पुरुषः, ये असंग है। ब्रह्म हमेशा असंग है। नादते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभुः अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये देखो इसका प्रमाण है कि परमात्मा पाप को ग्रहण नहीं करते और पुण्य को ग्रहण नहीं करते। इसलिए स्वामी जी से, स्वामी अखंडानंद से एक ने पूछा कि महाराज ये बोलो कि कौन चीज हम खावें कौन चीज न खावें। तो महाराज जी ने कहा जो चीज भोग लगता है उसको खाओ भाई, जो चीज भोग नहीं लगता उसको न खावे। जब भगवान को भोग लगता है तो प्रसादी है, लहसुन प्याज यदि भोग लगता है तो उसको भी ग्रहण करो, मांस मछली यदि भोग लगता है तो उसको भी ग्रहण करो, वो लगता नहीं है। सत्वगुणी पदार्थ ही ईश्वर को भोग लगता है। जैनियों में तो ये भी नहीं है, टमाटर नहीं खाते वो लोग, जैनियों में टमाटर को अशुद्धि मानता है, गोभी नहीं खाता। देखिए इतना बढ़िया बढ़िया सब्जी है गोभी, उसको वो लोग नहीं खाते। आलू तो खाते ही नहीं है, वो कहते हैं ये हमको नहीं चाहिए ये सब चीजें। एक ने कहा कि सफरजन भी नहीं खाता सेव, उनका एक नियम है। तो कभी कभी ये शास्त्रों में जो है ना ये विषय आया है कि यहां पर इस बात का निरूपण किया गया है कि महाराज ने कहा कि तुम्हें कौन सी चीज खाना है नहीं खाना है इसको आप छोड़ो, जो ईश्वर को भोग लगता है तुम ही निवेदित तो भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही करणित करही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करो और आप लो। इसलिए गीताकार ने एक उदाहरण दिया, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। आकाश बहुत बड़ा है और मैंने कल आपको बताया था कि आकाश का अर्थ ही व्याकरण में यह है अवकाशम ददाति आकाश, जो अवकाश देवे। अवकाश का मतलब छुट्टी, आपका जो है आई ड्यूटी नहीं है तो अवकाश है। तो ये सब अवकाश है, ये अंगुली में ये है, ये नाक में जो वायु है सिर के ऊपर है, आप आकाश से भिन्न नहीं है। आप जहां भी बैठते हैं ये जो पोल है ना ये सब आकाश है। लेकिन आकाश को शास्त्रों में व्यापक बताया गया है और तैतरीय उपनिषद में आकाश परमात्मा से प्रकट हुआ है, तस्माद वा ये तस्माद आकाश संबुद, ये आकाश उसी से ही उत्पत्ति हुई है। लेकिन आकाश में एक वायु देवता है जहां पर कहते हैं आकाश स्थितो नित्यम वायु, ये जो वायु है ये आकाश में सर्वत्र व्यापक है। आकाश भी बृहद है व्यापक है और वायु भी महान है, महान वायु सदा आकाश में स्थित है। वायु का अर्थ होता है बाती गच्छति इति वायु, ये वायु का लक्षण ये है। बा गति गंधनयो एक धातु है, बा गति गंधनयो, उससे जो है ना वायु शब्द का रूप बनता है, बाति गच्छति सर्वत्रम इति वायु। पौराणिक कथा के अनुसार वायु देवता कश्यप ऋषि और अदिति के बेटे हैं, गर्भ में इंद्र ने उनको 49 खंड किया तो वायु की मृत्यु नहीं हुई, तब से ये वायु का जन्म हुआ। और वायु के विषय में छांदोग्य उपनिषद में एक राजा हुआ है जानश्रुति, वो बहुत बड़ा दाता था, बहुत बड़ा संवर्ग विद्या के ज्ञाता था। आकाश में दो हंस उड़े जा रहे हैं और एक हंस कहता है भल्लाद, ये जानश्रुति की बगीचा है ये यहां। और राजा जानश्रुति आम के पेड़ के नीचे सोया है, धीरे धीरे चलो, ये बहुत बड़ा दाता है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, संवर्ग विद्या जानता है। तो एक हंस ने कहा कि देखो ये जो राजा है ना, ये ज्ञानी जरूर है, दाता जरूर है, लेकिन अमुक गांव में जो एक गाड़ी है, एक सकट है, और उसके नीचे जो खुजली वाला जो रेकव मुनि है ना, उससे बड़ा नहीं है। तो हंस ने कहा वो क्या है, बोले उसका घर वो गाड़ी है, गाड़ी के नीचे एक कुटिया है, गाड़ी में रहता है वो, सगड में, शरीर में उसको खुजली बहुत है और दिन भर खुजाता रहता है। सबसे बड़ा ब्रह्म विद्या का और संवर्ग विद्या का ज्ञाता वो रेकव मुनि है, और ये जो दान धर्म करता है ना उसको मिलता है, इसलिए इसके पास कुछ है नहीं। जानश्रुति ने जब सुना तो रेक को ढूंढने के लिए जब गए तो देखे कि एक गाड़ी है, सकट है, उसके नीचे एक बालक बैठा है। तो बोले आप रेक को हैं क्या? तो उसने कहा मैं रेक को हूं। राजा जानश्रुति बहुत धन संपदा लेकर के जब पहुंचा तो उपनिषद में उसको शूद्र कहा उसने, रेक को ने कहा तो शूद्र है। तो जात में शूद्र जो है ना ये जानश्रुति नहीं था, वो तो क्षत्रिय था, लेकिन रेक को ने जब शूद्र कहा तो उसने कहा महाराज आप मुझे शूद्र बोलते हैं, मैं तो शूद्र नहीं हूं। तो कहा सूचम आद्रवती इति शूद्र, जो नित्य शोकाकुल होता है ना उसको शूद्र कहते हैं, जो नित्य ही रोता है। शरीर आप में, आपके शरीर में मुख ब्राह्मण है, क्षत्रिय के रूप में जो है ना ये हाथ है, वैश्य के रूप में जंघा है, और पैर जो है ना शूद्र है, ये चरण को शूद्र कहा गया है, मुख को ब्राह्मण कहा गया है, हाथ को क्षत्रिय कहा गया है, और जंघे को वैश्य कहा गया है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस, ये चातुर्वर्ण जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हैं, ऐसे चातुर्वर्ण में शरीर में है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु उरु राजन्य कृतः, उरु तदस यद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत, इसलिए जो है ना ये पैर शूद्र है और मुख ब्राह्मण है। मुख में भगवान नाम का उच्चारण आप करते हैं इसलिए मुख ब्राह्मण है, हाथ में सेवा करते हैं इसलिए ये क्षत्रिय है, जंघे के द्वारा जो है ना गो ब्राह्मण की सेवा करते हैं इसलिए जो है ये कटितट वैश्य है, और पैर में चलते हैं, तीनों वर्णों की सेवा शूद्र करता है, इसलिए तीनों वर्णों में ये जो चरण है, पैर है, ये शूद्र है। इसलिए गीताकार ने इस बात को कहा कि वायु सर्वत्र गो महान, बाति गच्छति इति वायु, जो सर्व रूप से सभी जगह पर व्याप्त हो, नित्यम वायु सर्वत्र गो सर्वत्रम गच्छति, कैसे वायु है तो विशेषण दिया महान, ये महान वायु है, वो सभी जगह पर व्यापक है, लेकिन आकाश में रहने पर वायु से उसका कोई संबंध नहीं है, आकाश के साथ वायु का संबंध नहीं है, आकाश जहां है वायु है, वायु व्यापक है। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। कठोपनिषद में एक ही परमात्मा है, एको देवः सर्वभूतेषु स्थितः। इसलिए कभी कभी कथा कहने वाले वक्ता लोग कहते हैं कि द्वारका जी में जब मीरा जी गई ना, उसने भगवान का दर्शन किया, और जैसे द्वारकाधीश को दर्शन किया तो उस समय वो मूर्ति थी कि नहीं थी पता नहीं। आजकल जो मूर्ति है ना, ऐसे लगता है कि जैसे भाई बहन है ये लोग। द्वारका की जो मूर्ति है राधा कृष्ण, ये लगता है कि भाई बहन छे बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल भाई बहन। लेकिन मीरा जी ने जब उसने दर्शन किया तो भजन गाते गाते उसने रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट साजे सो मेरो पति होई। और भगवान के विग्रह को पकड़ा उन्होंने, ऐसे जैसे पकड़ा तो पंडों ने सोचा ब्राह्मणों ने कि मीरा आई गई कहां, ढूंढते ढूंढते थक गए, मीरा जी मिली नहीं। तो मूर्ति से जो है ना उसको वाणी सुनाई पड़ा वहां के लोगों को कि मीरा तो आई थी दर्शन करने के लिए, लेकिन ये जो द्वारका जी का जो विग्रह है भगवान का, इस विग्रह में चली गई। इसलिए मीरा जी जो है ना वो विग्रह में समाविष्ट हो गई और वो द्वारकाधीश के रूप में जो है ना वो स्थित हो गई। वहां पर मीरा जी का जो शरीर है ना मिला नहीं, वो द्वारकाधीश में ही चली गई। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए, साथ में बड़े बड़े उनके संत थे। गौरांग चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी आए तो श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया देखो, और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते करते रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदैव पटले स्तुतिर प्रादुर्भाव प्रतिपदमुपाकर्ण सदय दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सुतायाम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जब भगवान का दर्शन करते हैं रो रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर जो है ना जगन्नाथ में चला गया, वो मिल गए उसमें। लोगों को ये पता नहीं चला कि जगन्नाथ जी के इसमें चले गए। इससे ये अर्थ है कि आपके जो हृदय है, जिस समय आपका चेतना उस महाचेतना में चला जाएगा, और उस समय आप में कौन जाति कौन वर्ण कौन धनी कौन गरीब, नाम रूप के व्यवहार जब चला जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, निष्प्रपंच हो जाएंगे। और जिस समय प्रपंच नहीं होगा उस समय संसार नहीं होगा। संसार होने पर भी संसार नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि आपके पास संसार नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई संसार नहीं है। जब आपके पास संसार नहीं है तो संसार में संसार नाम के कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि नाम रूप के प्रपंच का अभाव। और साधक को जब हो जाएगा तो मांडुक्य कारिका में गौड़ पादाचार्य ने एक जगह लिखा है, प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। यदि प्रपंच होगा संसार होगा तब तो उसकी निवृत्ति होगा। रस्सी में सांप नहीं होता, लेकिन सर्प का अभाव अत्यंताभाव है, तीनों कालों में सर्प नहीं है। लेकिन भ्रम से लोग रस्सी में सांप कहते हैं, रस्सी रूपी अधिष्ठान में सर्प अध्यस्त नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। तो ये भ्रमात्मक ज्ञान है। ये जो भ्रमात्मक ज्ञान है उसका नाश किसके द्वारा होगा, ज्ञान के द्वारा होगा। रस्सी को देखने पर रस्सी का जो अज्ञान है सांप, रस्सी के ज्ञान से रस्सी जनित जो सांप है उस अज्ञान का नाश होगा। ये रस्सी को देखा आपने, ये सांप है, और जो सांप नहीं है, सर्प नहीं होने पर रस्सी रूपी अधिष्ठान में रज्जू में जो सांप का अध्यस्त हो रहा है वो है अज्ञान, लेकिन रज्जू को रज्जू कहा तो हुआ ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का हो गया नाश। लेकिन दोनों कैसे होंगे, जैसे आप कथा सुनते हैं ना, अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और अर्जुन ने भी मारा, दोनों ब्रह्मास्त्र गए और एक जगह पर लोप हो गए, संहार अर्जुन ने किया और दोनों की शक्ति एक जगह पर समाविष्ट हो गया। जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है ना, वहां ज्ञान और अज्ञान दोनों नहीं रहते, वहां समाप्ति हो गई। जब ज्ञान और अज्ञान दोनों नहीं रहे तो कौन रहेगा, विशुद्ध तत्व ही रहेगा, परमेश्वर ही रहेगा, राम ही रहेगा। इसलिए वहां पर आपके सच्चिदानंद स्वरूप ही रहेगा। इसलिए गीताकार का ये कहना बड़ा अच्छा है कि वायु हो, जैसे वायु है सर्वत्र है, आकाश में है, लेकिन वो असंग है, वो संग में नहीं है। तो मैं जो ब्रह्म व्यापक हूं, मैं ऐसे असंग हूं। असंग का उदाहरण यहां पर एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, संपूर्ण वो व्यापक है और संपूर्ण शरीर में है, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वो सर्वव्यापक है और सभी भूतों में है। सभी भूतों में जब वो व्यापक है, सर्वव्यापी है, यहां मतलब क्या है जानते हैं, ऐसी कथा है कि भगवान राम जी धनुष बाण को उठाए और भंग किया और जानकी जो है ना फूलमाला लेकर के खड़ी है, और फूलमाला लेकर खड़ी है तो राम जी बहुत बड़े हैं, फूलमाला पहना नहीं पाती है, लेकिन लखन लाल ने देखा कि चलो मैं ही प्रणाम करता हूं, तो राम जी को प्रणाम करने के लिए जब चले और भगवान राम जी ने जैसे लखन को उठाया तो सीता जी ने फूलमाला गले में दे दिया। जैसे फूलमाला गले में दे दी तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो तुलसीदास जी ने लिखा है, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे आगे राम है, पीछे पीछे सीता जी है, और उसके पीछे जो है लखनलाल है। ये तीनों अयोध्या से वनवास की ओर जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं, मानो कि ब्रह्म आगे चल रहा है, बीच में जो है ना माया जी चल रही है और माया शक्ति के पीछे जीवात्मा जा रहा है, ऐसे अनुभव हो रहा है। तो लखन के रूप में जैसे भगवान को फूलमाला वो प्रणाम करने के लिए गए तो सीता जी ने फूलमाला डाल दिया, ऐसे जीव क्या करता है, जिस समय मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, इस प्रकार के भाव हो जाता है कि उस परमात्मा से मैं अलग नहीं हूं, उस समय आपने क्या है, एक फूलमाला डाल दिया, ये जो अहम वृत्ति रूपी जो फूलमाला है ना, ये चढ़ा दिया आपने। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए गुरु शरणानंद जी वो जो बोलते हैं ना, माई डियर, वो करते रहते हैं, महाराज जी यही कहते हैं, कभी भी आएंगे तो 20 बार तो माई डियर करेंगे। तो बड़ा प्यारा शब्द है, महाराज जी का भी बड़ा प्यारा शब्द है और उनका भाव भी है। तो ये गीताकार के भी अर्थ है, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महा तथा सर्वाणी भूतानि। इसको थोड़ा उपनिषद में बताया, एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के हृदय के अंतःकरण में मैं बैठा हूं, लेकिन कर्माध्यक्ष, सभी कर्मों को मैं जानता हूं, अध्यक्ष हूं। आप जो भी कर्म करते हैं ना, वो सबको जानता है। आपने कथा सुनी होगी ना कि नरसिंह मेहता जी बड़े गुजरात के माने हुए संत थे, भक्त थे, उनकी जब शादी पड़ी घर में बेटे की, तो जितने बराती आने वाले थे ना, 50 आने वाले थे और आ गए 200। उसने कहा ये मालपुआ बनाए, पूड़ी बनाए, वहां के जो बनाए थे। उनके पत्नी ने कहा कि एक काम करो, बगल में जो बनिया की दुकान है उधार ले आओ, अब जाओ। गए गए तो क्या है, वहां हरे राम की कीर्तन चल रहा था भगवान की, वो कीर्तन में मस्ती में डूबे और बोरा को रख दिया और कीर्तन में जब डूबे तो कर्माध्यक्ष भगवान सभी कर्मों के अध्यक्ष हैं। तुरंत कन्हैया जी रणछोड़ जी नरसिंह बनकर के जब आए और इतने मिष्टान्न लाए, भगवान ने जब दिया तो नरसिंह की पत्नी बराती को खूब खिलाया और बहुत बच गया। सुबह की बेला में लौट करके जब आए तो ध्यान आया कि घर में शादी था और हम तो भजन में रह गए। पत्नी को उन्होंने प्रणाम जैसे किया, बोले कि आपको मैं प्रणाम है, मेरे से बड़ी अपराध हो गई। बोले काहे? बोले आप जब गए तुरंत आए, सब मिष्टान्न है और आप ही लाए। तो नरसिंह मेहता जी ने अपने पत्नी को पुनः प्रणाम किया। उसने कहा मैं नहीं लाया। यहां जो भगवान है ना कृष्ण कन्हैया रणछोड़ जी, वही लाए, मेरे रूप धारण करके आए और तुमने दर्शन किया तो तुम्हारे जैसे धन्यवाद के पात्र संसार में नहीं है। इसलिए कभी कभी वेदांत शास्त्रों में या अन्य ग्रंथों में भी यही आया है कि आपकी चेतना जब उस परम चेतना में लीन हो जाएगा ना, तो जो ब्रह्म असंग है ना वो सगुण ब्रह्म में आ जाएगा, आपका बेटा बन जाएगा। कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी रोदन सुजाना, हर शीत माना, हो ही बालक सुर भूपा। इसलिए रामचरितमानस में भी कौशल्या जी ने जब विष्णु जी को कहा कि आप तो गुरु हैं, इष्टदेव हैं, आप ऐसे करो बच्चे बन जाओ, तो भगवान ने कहा संभव नहीं है। बोले माता जी बोलो कि बच्चे बनूं तो क्या करूं? तो कहा कि एक काम करना पड़ेगा, कीजे शिशु लीला, आप बच्चे मत बनो, आप बच्चे नहीं है, तुम स्त्री पुमान असी तोम्बा कुमारी, आप बालक की लीला करो। बोले बोले कि आप कौन सी लीला? तो बोले कि कीजे शिशु लीला, बच्चा बन जाओ आप, अति प्रिय शीला। तो भगवान ने विष्णु जी ने कहा कि बोलो क्या करूं पहले? बोले आप रोना प्रारंभ करो। सुनी रोदन सुजाना, हर शीत माना। बोले मैं रोए तो क्या करूं? बोले पहले रो तो सही, और भगवान देखो रोना प्रारंभ किया। इससे सिद्ध होता है कि आप जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, जिसकी आप स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर आपके पास है, और आपके पास तो इसलिए है कि आपके हृदय में है। जा देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वो चेतन आत्मा आप हैं, आपके हृदय में है, आपके भाव जैसे जगेगा ना, वो भगवान जो है ना उसी रूप में प्रकट हो जाता है। ये ईश्वर की विशेषता है। इसलिए सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय, संपूर्ण संसार जो है मेरे में है। एक ने कहा कि संसार को बनाने वाला ईश्वर है, और ईश्वर जब संसार को बनाया तो बंबई आया, एक महात्मा का अभिप्राय से था। उसने बंबई आया तो लोगों को पता चला कि आज भगवान आ रहे हैं, तो लोग आए। भगवान ने कहा कि मेरी सृष्टि में तुम्हें कैसे लगा? तो एक नेताजी खड़े होकर के कहा कि देखो आप भगवान हैं? बोले हाँ मैं भगवान हूं। बोले महाराज आपने संसार तो ठीक बनाया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आपके पास बुद्धि नाम के कोई चीज नहीं है, ऐसे हमने देखा, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है। उसने कहा क्या हो गया? बोले समुद्र को बनाया तो ये लवण क्यों बना दिया, ये नुनिया क्यों बना दिया, खारा क्यों बनाया? तो एक सज्जन खड़े हुए, बोले कि आपने पहाड़ भी तो बनाया। बोले बनाया, चढ़ने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं किया। तो भगवान को लगा कि ये साक्षात में मनुष्य जो है ना दोष देखते हैं। जब ईश्वर में दोष देखने लगा ना, तब गीता जी में भगवान वेद व्यास जी को कहना पड़ा, यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। आकाश व्यापक है और वायु व्यापक है, आकाश के साथ वायु है, आकाश और वायु का दोनों का मिलन नहीं है, असंग है। आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को जब देखा तो उन्होंने चौपाई लिखा, कर्म प्रधान विश्व गरिराखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये चौपाई क्यों लिखी गई? जब लोगों ने भगवान के ऊपर दोष देखना प्रारंभ किया, पहले ये चौपाई नहीं था, तब उन्होंने कहा कर्म प्रधान विश्व करी रखा, कर्म ही सब कुछ है। इस बात का निरूपण जब भगवान श्री कृष्ण लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिना, यहां पर करते हैं कि दो निष्ठा है, एक ज्ञान योग है एक कर्म योग है, इसलिए भगवान यहां कहते हैं तथा सर्वाणी भूतानी मस्तानी, संपूर्ण जगत मुझ विराट पुरुष में अध्यारोप है। जिस विराट रूप का दर्शन अर्जुन करते हैं, और अर्जुन जब विश्व रूप का दर्शन करते हैं तो अर्जुन को भगवान ने पूछा कि अर्जुन तू कहां है? अर्जुन ने कहा कि आपके गर्भ में मैं भी हूं। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रवाहो भव विश्वमूर्ते, मैं भी वही हूं लेकिन आपका रूप देखता हूं, लेकिन ये पांडव भी यही है, भीष्म भी यही है, द्रोण भी यही है, लेकिन अर्जुन भी वही खड़ा है। विराट रूप का दर्शन अर्जुन को भगवान ने एक चश्मा देकर के किया, जिसको दिव्य नेत्र कहते हैं। विश्व रूप का दर्शन अर्जुन करते हैं लेकिन एक चश्मा दिया ना, दिव्यम ददामिते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। भागवत जी के जसोदा जी माता जी ने जब विराट रूप का दर्शन किया तो चश्मा नहीं पहना देखो। भागवत जी में कथा आती है ना कि भगवान ने कहा कि मिट्टी मैंने नहीं खाई, बलदेव जी ने कहा कि मिट्टी तो खाई है, ना हम भक्खितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिन, मैंने मिट्टी तो खाई नहीं। तो जसोदा जी ने जब डांटा तो कृष्ण भगवान ने मुख को खोला तो वहां संपूर्ण विराट रूप का दर्शन हुआ। विराट रूप का दर्शन जब जसोदा जी करती है तो भगवान ने नहीं कहा कि एक चश्मा पहनो, कहा नहीं कहा, लेकिन अर्जुन को कहा कि एक पहनना पड़ेगा। दिव्यम ददामिते चक्षु, अर्जुन को भगवान ने इसलिए कहा कि आप शोकाकुल हैं, आप अज्ञान और अविद्या के अंतर्गत बंधे हुए हैं अर्जुन, इसलिए भगवान ने कहा कि थोड़ा चश्मा लेना पड़ेगा। लेकिन वहां पर जसोदा जी जो है ना, भक्ति का जो है ना वो तो पुरुष है, भक्ति ही रूपिणी है, वात्सल्यमयी जो है ना जसोदा जी है। यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश देवे, इसलिए भगवान ने नहीं कहा कि माताजी एक चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति स्वरूपिणी सर्वत्र भक्ति का रूप रखने वाली ये जसोदा मैया जी है, इसलिए भक्ति के सामने भगवान जो है ना बंधे हुए हैं। और ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति का निरूपण जो है ना अन्य प्रकार से है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते, ये भी भक्ति है कि आप अपने स्वरूप को जान लेना, इसको भी तो भक्ति कहते हैं। खाना पीना पूजा पाठ अर्चना षोडश उपचार से जो करते हैं वो भी भक्ति है, लेकिन सर्वोत्तम भक्ति ये है कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते, विवेक चूड़ामणि में आया। इसलिए कृष्ण का कहना है सर्वाणी भूतानी मस्तानी, संपूर्ण भूत मेरे शरीर में है इति उपधारय, सर्वभूतानि कुंतेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। बोले कि सर्वव्यापक यदि आप हैं तो आपको लोग जानते क्यों नहीं है। तो गीता जी के सातवां श्लोक पर यह विचार की गई, सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। हे कुंतेय, कुंती का बेटा अर्जुन, कुंतेय कितने थे? छह। कर्ण जो है ना वो भी तो कुंतेय था। जिस समय सब लोग की मृत्यु हो जाने के बाद जल दिया और जिस समय वो श्रद्धांजलि देने लगे और सबका नाम लिया तो कृष्ण ने कहा कि रुक जाओ आप। तो युधिष्ठिर ने पूछा और कोई है? बोले एक है। कौन है? बोले बुआ बताएगी, हम लोग नहीं जानते कौन है। तो कुंती खड़े है वहां और कुंती रो रही है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि बोलो माता जी और कौन है, कुछ बोल नहीं रही है। कृष्ण भगवान ने कहा बुआ जी सही बोलो, और कोई है क्या? तो रोते रोते उन्होंने कहा कि ये कुंते है। बोले वो कुंते कौन है? बोले महादानी कर्ण है, वो कुंते है। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण ये कुंते है? बोले ये कुंते है, ये राधे नहीं है, ये सूर्य का पुत्र और कुंती का बेटा कुंते है। तब उनको लगा कि ये देवी लोग जो है ना बड़े झूठ बोलते हैं। तो राजा युधिष्ठिर ने श्राप दिया कि नारी के पेट में कोई बात रहेगी नहीं। तब से ये कहते हैं कि वो उनके पेट में कोई चीज छिपता नहीं है, वो किसी न किसी को भी बताना उनको जरूरी हो जाता है। इसलिए उन्होंने उसी समय श्राप दिया कि देवी के गर्भ में कोई बात रहेगी नहीं, प्रकट हो जाएगी। कभी कभी प्रकट हो ही जाता है, नहीं भी होता है, लेकिन ये सामान्य है कि युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया। तब इनको पता चला कि ये कर्ण जो है ना कुंते है, लेकिन कुंते शब्द बड़ा प्यारा था तो केवल अर्जुन के लिए ही प्रयोग होता था उस समय। कुंते युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, नकुल के लिए, सहदेव के लिए, कर्ण के लिए कुंते शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। विचार सागर में निश्चल दास ने थोड़ा कुंते शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि जैसे कर्ण कुंते है उसको पता नहीं है, वो अपने को राधे कहता है, और कृष्ण ने कहा कि कर्ण तू कुंते है। जिस समय कर्ण को पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूं तो राधे का जो ज्ञान था ना वो समाप्ति हो गया। ऐसे साधक को, जीव को जब पता चलता है मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, उसी समय ये जो जीव भाव है, परिच्छेद भाव है, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम रोगी, अहम भोगी, ये जो भाव है ना ये समाप्ति हो जाएगा। स्वामी अखंडानंद जी को तो लोगों ने देखा है, महाराज जी को जो है जब बीमार हो गए तो ये पेट में एक नली लगता था, उस नली से जो है ना शौच होता था, पेशाब में भी नली लगा था, लेकिन महाराज जी ऐसे लेटे लेटे हंसते थे। स्वामी जी वो कहते मैं शरीर नहीं हूं भाई, मेरे पास कोई रोग नहीं, कोई भोग नहीं, कोई संसार नहीं, मैं तो केवल आत्मा हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मवेत्ता जो है ना ब्रह्म को जानता है। इसलिए वो कहते थे कि ये सब मेरे में नहीं है, नमाम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फलेष्प्रिया इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सवध्यते। इसलिए एक चीज है, बोले क्या है, एक व्यक्ति बैंक में गया और 2 लाख रुपया जमा किया और जैसे जमा करके घर में आया तो 2 व्यक्ति उसके पास आए। उसने कहा कि आपने जो बैंक में पैसा रखा था ना वो चोरी हो गया हमारे सामने, और आपको हम बोलने के लिए आए हैं आपका पैसा नहीं है। तो उस व्यक्ति ने, उस सेठ जी ने कहा कि देखो मेरा पैसा है, यदि बैंक में चोरी हो गया तो होने दो, लेकिन मेरे पास प्रमाण है। बोले क्या है? ये स्लिप है, ये छोटा वाला जिसमें वो 2 लाख रुपया जमा किए हैं, ये स्लिप ही सिद्ध करता है कि मेरा पैसा चोरी नहीं हुआ, मेरा पैसा है। तो भगवान यही कहते हैं कि आपका सब चोरी हो गया, लेकिन आपके पास एक स्लिप है, वो है सत्संग। ये जो सत्संग है, ये जो भजन है, ये आपका जो है ना स्लिप है, वो छोटा वाला। आपके पास धन नहीं है, जन नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास अपना मन है, और मन जब भगवान के चरण में देते हैं तो वो स्लिप है। आया है तू कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये प्रेम भूषण जी बहुत अच्छा गाते हैं, और रामायण ही है ना प्रेम भूषण, एक तो हमारे वो मित्र हैं, तो बड़े अच्छे भाव से गाते हैं। वो कहते कि ये कबीर का है ये, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इसलिए कृष्ण भगवान की ये वाणी है, सर्वभूतानी प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। संपूर्ण प्राणी जो है ना प्रलय काल में प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति का अर्थ दो रूप है, प्रकृष्टेन कृति प्रकृति। प्र उपसर्ग जो है ना वो प्रकृष्ट को कहता है, प्रकृष्टेन कृति। ईश्वर ने जो कृति बनाया, ईश्वर ने जो शरीर बनाया, आपका एक बच्चा है और आपने उसके लिए ड्रेस बनाया। क्रिकेट खेलने जाएगा तो अलग ड्रेस है, स्कूल में जाएगा तो अलग ड्रेस है, बाजार में जाएगा तो अलग ड्रेस है, खेलेगा तो अलग ड्रेस है। एक बच्चे के लिए आपने कितने ड्रेस बनाए? अपने बेटा बेटियों के लिए 10-10, 20-20 तो ड्रेस ये बनाए। तो ईश्वर ने जो है ना अपने बेटों के लिए एक ड्रेस बनाया। कितना ड्रेस बनाया उसने? 84,00,000। वो कपड़ा बनाया अपने से 84,00,000। आप 84,00,000 कपड़े पहनो, जो आपको इच्छा है, गधे की कपड़े, कुत्ते की कपड़े, बैल की कपड़े, भैंस के कपड़े, आपको जो कपड़ा पहनना है ना वो कपड़ा पहन करके आप घूमो। इसको शास्त्रों में कहते हैं प्रकृति। ये जो प्रकृति है, प्रकृष्टेन कृति प्रकृति। दूसरा प्रकृति का लक्षण है त्रिगुणात्मिका जो माया है, उसको भी वेदांत में प्रकृति कहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है ना, इसको भी प्रकृति कहते हैं। और गीता जी में जो अपरा प्रकृति बताया है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपरा जो प्रकृति है ना, इसको भी शास्त्रों में प्रकृति कहते हैं। यहां ये श्लोक के ऊपर, 7वां श्लोक के ऊपर जो प्रकृति शब्द है, वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही ग्रहण किया है। सर्वाभूतानी मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। संपूर्ण प्राणी के लोग त्रिगुणात्मिका प्रकृति में ही, माने निकृष्ट प्रकृति को प्राप्त करते हैं, ये प्रकृति। लेकिन वो क्या होता है, जो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों की जो प्रकृति है, सत्वगुण ज्ञान को देते हैं, रजोगुण लोभ को देते हैं, भोग को देते हैं, और तमोगुण प्रमाद और मोह को देते हैं। सत्वगुण जो है ना ज्ञान देता है, रजोगुण जो है ना भोग और लोभ देगा, तमोगुण प्रमाद और मोह को देता है। इसलिए कथा श्रवण के बाद जो है ना, जब लोग कथा सुनता है, संगीत होता है, तो लोग सो जाते हैं ना कभी कभी नींद में, ये होता है। तो वहां पर एक महात्मा जी वो कहते थे कि देखो श्रोता भी हमारे यहां तीन प्रकार के हैं। वो कहते श्रोता, एक श्रोता है, एक सोता है, एक सरोता है, उनका यह अभिप्राय था। श्रोता माने जो श्रवण भी करे, मनन भी करे, निधिध्यासन करे, वो श्रोता है। इसलिए हमारे यहां जो है ना ऐसे ऐसे श्रोता की बात कही है। भुसुंडी एक कथावाचक हैं और श्रोता गरुड़ जी महाराज है। गरुड़ कथा सुनते हैं और भुसुंडी बोलते हैं। देखो एक श्रोता तो ऐसे हैं और गरुड़ भगवान का दर्शन करते हैं और मोह में आ जाते हैं। राम के दर्शन के बाद राम जी के दर्शन हुआ और गरुड़ जी को मोह हो जाता है। ये बड़ी आश्चर्य है, भगवान के दर्शन के बाद मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गरुड़ जी को हो गया। क्यों हो गया? बोले एक नंबर के श्रोता नहीं था वो। यदि श्रोता होता तो मोह नहीं होता। इसलिए श्रोता तो है, लेकिन श्रोता होने पर भी गरुड़ जी का मोह किसके द्वारा नाश हुआ? राम का दर्शन से मोह हुआ और राम के कथा से मोह का नाश हो गया। राम जी की कथा श्रवण की तो मोह नाश हो गया, राम के दर्शन से मोह उत्पन्न हुआ। ये देखो, भगवान के दर्शन से मोह हो सकता है। ये संपूर्ण जगत ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधकस्य स्विद्धनम। ये संपूर्ण जगत ईश्वर है, आप देख रहे हैं, देखने वाले भी आप चेतन हैं और जिसको देखते हैं वो भी चेतन है। चेतन सबको देखता है, जड़ किसी को नहीं देखता है, ये नियम है। चेतन जो है वो सबको देखता है। आप चेतन हैं तो आपके शरीर सोनू है, मोनू है, ये आजकल के डेट में तो बड़े बड़े अद्भुत नाम लोग रखता है, पिंटू, चिंटू, मिंटू, क्या क्या सब रखता है लोग, ये बच्चों का नाम रखता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस बात को उठाया, प्रकृतिम, यहां कहते हैं प्रकृति माने त्रिगुणात्मिका प्रकृति। कल्पक्य ये पुनस्तानी, आप सप्तगुणी हैं, तो जब आपका शरीर चला जाएगा, पुनर्जन्म होगा, तो आप सत्वगुण में आएंगे। आप यदि रजोगुणी हैं तो रजोगुण में आएंगे, और सत्वगुणी हैं और तमोगुणी है तो तमोगुण में आएंगे। कल्प क्षय पुनस्तानी, जब कल्प का नाश हो जाता है, चतुर्योगी को कल्प कहते हैं जी, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। लेकिन ज्योतिष के अनुसार एक कल्प ऐसे होता है कि 12 साल में एक कल्प होता है, 48 साल में आप चतुर्युगी हैं। 12 × 4 = 48 आप जब करेंगे तो 48 साल आपका हो गया, तो आप चारों युग को भोग लिया आपने। ये कल्प इसको भी माना जाता है। और सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, इसको जो चतुर्युगी होता है ना, इसको कल्प कहते हैं। और कल्प शब्द का अर्थ होता है कि आपको 48 साल हो गया तो आप एक कल्प पार कर दिया, और 48 साल के बाद आप यदि और हैं तो वो कल्प आगे होता रहेगा। लेकिन शास्त्र में एक कल्प होता है जिस कल्प को प्रलय काल कहते हैं। एक प्रलय काल होता है। प्रलय दो प्रकार का होता है, एक नित्य प्रलय होता है, एक नैमित्तिक प्रलय होता है। प्रलय का अर्थ होता है मृत्यु। जब व्यक्ति सोता है तो प्रलय हुआ, जब जगता है तो जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो माता पिता को प्रणाम करें, क्योंकि आपकी मृत्यु हो गया सोने के समय। जब जगे तो आप मृत्यु से बचे हैं, इसलिए सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की प्रणाम करना चाहिए। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरत आत्मतत्व सच्चिद, ये इसलिए प्रातस्मरण करना चाहिए। गुजरात में अहमदाबाद में जिस समय भूकंप आया, हम लोग कुंभ मेला में थे, तो अहमदाबाद में प्रवचन करने के लिए हम भी आते हैं कई सालों से, तो एक पांडे के घर में, पांड्या घर में रोटी खाने के लिए बुलाया मुझे। तो मैंने उसको ये कहा कि आप पांड्या हैं, आप सुबह उठ करके भूमि को प्रणाम करो, भूमि को प्रणाम करो। मां को प्रणाम करने पर संकोच लगेगा, पिता को प्रणाम करने पर थोड़ा खराब भी लग सकता है, और पत्नी यदि पति को प्रणाम करे तो और शर्म लगे, लज्जा लगे, जो बात अलग है। लेकिन मां को तो प्रणाम करो। समुद्र बसने देवी पर्वते स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। तो आपको विश्वास नहीं होगा, जब भूकंप हुआ ना तो उसके फ्लैट जितने थे लोगों का, लोग मर गए, वो गिर गया, लेकिन इस परिवार बच गया पूरा, उसका घर जैसे कि तैसे। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, बोले भूमि को प्रणाम करने का ये फल हुआ कि हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं हुआ। देखो ये तो केवल भूमि को प्रणाम करना है, और दूसरे को प्रणाम करे न करे वो बात अलग है। और समुद्र बसने देवी, आप नहीं भी जानते हैं तो सुबह जब पैर रखते हैं तो पहले भूमि माता को थोड़ी सी प्रणाम करना चाहिए, जब उठें 8 बजे 9 बजे 10 बजे सुबह जब भी उठते हैं तो भूमि को ही प्रणाम करना चाहिए। तो कल्प के जब क्षय हो जाता है, प्रलय काल होता है, कल्पादो और कल्प के आदि में उस संपूर्ण जगत को मेरी जो शक्ति है, तो हम वैष्णवी शक्ति रणंद वीर्य विश्वस्य बीजम परमा शिवाय संबोहितम देवी समस्तमेतत् त्वम्बे प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु। यही माया संसार बनाती है, इस प्रकार से यहां बताया गया है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
जय राम जय जय।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।